તારીખ 8/6/1996 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન.
શ્રી મદ્રાજચંદ્રોચનામૃત પત્ર 833 पत्र के प्रारंभ में स्वरूप में स्थित होने वाले और प्रतिबंध रहित ऐसे परम पुरुष को नमस्कार किया. अब उन्हीं की प्रशंसा करते हुए कुछ और वचन यहाँ प्रकाशित करते हैं. कैसा होता है पुरुषार्थ? मोक्ष मार्ग में विचरने वाले धर्मात्माओं का पुरुषार्थ कैसा होता है कि जिसको कुछ प्रिय नहीं और जिसको कुछ अप्रिय भी नहीं, संसार के कोई पदार्थ, जगत के कोई पदार्थ अच्छे भी नहीं लगते और बुरे भी नहीं लगते. और वास्तव में ऐसा ही है, पदार्थ कोई अच्छा बुरा है भी नहीं. जिसको कुछ प्रिय नहीं, जिसको कुछ भी अप्रिय नहीं और जिसको कोई शत्रु नहीं और जिसको कोई मित्र नहीं, यानी शत्रुता का भाव रखने वाले और मित्रता का भाव रखने वाले दोनों जिसको समान हैं, वो कब हो सकता है कि जब आत्मा मात्र ज्ञाता भाव में रहे. तब मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, मेरे सिवा जितने भी पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं ये सब ज्ञेय हैं, मात्र ज्ञेय है, कोई अच्छे भी नहीं कोई बुरे भी नहीं, कोई शत्रु भी नहीं और कोई मित्र भी नहीं. शत्रुता के भाव रखने वाले और मित्रता के भाव रखने वाले दोनों में प्रकार अंतर हैं, अलग अलग प्रकार हैं. वो प्रकार को जानते हुए भी ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग प्रकार को जानते नहीं. जैसे सुगंध सभी को प्रिय है संसार में और दुर्गंध किसी को प्रिय नहीं, तो जो ज्ञाता भाव में रहते हैं उसको सुगंध सुगंध रूप में नहीं ग्रहण होती है, नहीं जानने में आती है, और दुर्गंध दुर्गंध रूप में नहीं जानने में आती है, ऐसा नहीं है. लेकिन अच्छा बुरा नहीं करते, जैसी सुगंध दुर्गंध जैसी है वैसी तो जाने, लेकिन अच्छा बुरा नहीं जाने. ऐसे जो पदार्थ जैसा है वैसा जाने, लेकिन इससे आगे कोई कल्पना नहीं करे. अच्छा बुरापन की कल्पना है वो पदार्थ को जानने के फिर आगे की विशेष रूप से कल्पित भाव रूप कल्पना है। और जिसको मान और अपमान वो नहीं है, कोई मान देता है कोई अपमान भी करता है, दोनों को न्याय समान न्याय समझते हैं। मान देने वाला अच्छा है, अपमान करने वाला बुरा है, ऐसा नहीं देखते, ऐसी कल्पना नहीं करते। वास्तव में ऐसा है कि आत्मा तो कोई आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता। जैसे ज्ञानी ऐसे भी लेते हैं कि आपने मेरा सम्मान किया लेकिन आप तो मुझे देख नहीं सकते, जिसको आप देखते हैं वो मैं नहीं, वो तो शरीर पुद्गल है, और जिसका आप अपमान करते हैं उसको भी देख तो नहीं सकते। फिर हम इस मान अपमान की दूसरे की प्रक्रिया को क्यों ओढ़े कि मुझे मान दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे तो जानता भी नहीं है, इसलिए मान अपमान किसका? और दूसरे का परिणाम और दूसरे की भाषा मेरे से भिन्न है, भाषा के पर्याय पुद्गल के और राग द्वेष के पर्याय इनके सामने वाले जीव के, दोनों मेरे से तो भिन्न ही भिन्न है। मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, फिर मैं क्यों ओढ़ूं? ये मेरा मान सम्मान है, मेरा अपमान है, ऐसा मैं क्यों ओढ़ूं? जैसा कि किसी ने किसी को कहा और बीच में माथा किसी दूसरे ने लगाया कि मुझे ऐसा क्यों कहता है, ऐसी बात होगी। ये तो फालतू का झगड़ा हो गया ना, कोई किसी को कहता है इसमें हम बीच में क्यों आ जाएं कि ऐसा क्यों करता है? ऐसा शरीर को देख करके कोई कुछ बोलेगा बोलेगा तो हम क्यों बीच में आ जाए कि हम हमको कहते हैं? मान अपमान का सवाल खत्म हो जाएगा। लाभ अलाभ किस में लाभ अलाभ होता है? आत्मा में तो कोई कमी बेसी होती नहीं, वो तो अबट घट है। कैसा है? न बढ़ता है न घटता है। फिर लाभ नुकसान किस में हो गए? जैसा कि किसी ने आपका सोना चुरा लिया, नुकसान हो गया? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? कि जो कुछ सोना था उसमें से कुछ हिस्सा और जगह गया। किस में से गया? कि जिसमें था उसमें से गया। मेरे में से कहाँ गया है और क्या गया है? कुछ गया। ज्ञानी कैसे लेते हैं? ज्ञानी का परिणमन कैसा होता है? हर्ष शोक वो भी ज्ञानी को नहीं है। ज्ञानी राजी होवे क्यों? कुछ मिलता है क्या? आत्मा को कुछ मिलता है क्या? क्या आत्मा को कुछ मिलता है ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि कुछ मिलता हो। मेरे में कुछ आता नहीं, न मेरे में से कुछ जाता है, कुछ मेरे में से जाए तब तो दुख होवे। इसलिए राजी होना नाराज होना वो बात नहीं। और जन्म मृत्यु सबसे बड़ा प्रसंग है। ये न आत्मा का जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा नया पैदा नहीं होता और उसका कोई नाश कर सके वो बनता नहीं। देह का संयोग से जन्म और देह का वियोग से मृत्यु लौकिक दृष्टि से संसार में लोग मानते हैं। ऐसा ज्ञानी जानते हैं कि ये लौकिक दृष्टि से संसार में ऐसी मान्यता चलती है। मेरा जन्म मरण कभी हुआ नहीं, ये सब मेरे में द्वंद्व मैंने ये सब दोनों है ना जोड़ के शत्रु मित्र लाभ अलाभ प्रिय अप्रिय हर्ष शोक जन्म मृत्यु सब मान अपमान द्वंद्व का अभाव हो गया। ऐसे दो प्रकार के परिणाम का अभाव होकर के जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति को प्राप्त हुए हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में आत्मभाव में स्थिर हो गए हैं और हो रहे हैं और भविष्य में जो भी होंगे उनके उन सबों के अति उत्कृष्ट पुरुषार्थ का पराक्रम स आनंद आश्चर्य उत्पन्न करता है। ऐसे महात्माओं का पुरुषार्थ का पराक्रम से हमको आश्चर्य भी होता है और आनंद भी होता है। तीनों काल के ऐसे महात्माओं के प्रति हमारा अनुमोदन है, उनको आनंद होता है। देखो संसार में राग द्वेष के जितने भी प्रसंग हैं वो कोई प्रसंग से उनको कुछ होता नहीं है। बड़ा से बड़ा प्रसंग तो होता है जन्म मृत्यु का, जन्म मरण का होता है, उनसे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस ध्रुव तत्व में कुछ फेरफार होता ही नहीं, जो तीनों काल वैसा का वैसा रहता है, ऐसा मूल स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आत्मा शुद्ध चैतन्य धातु है, तो ऐसा अनुभव करता है कि मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं तो ऐसा का वैसा रहता हूं। मेरे बाहर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे में कुछ होता नहीं। जब मेरे में कुछ होता नहीं ऐसा मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है, फिर मुझे क्या। आपने स्वप्न देखा, क्या देखा? स्वप्न देखते हो। जागृत अवस्था में स्वप्न कैसा लगता है? अवस्तु रूप लगता है। कैसा लगता है? अवस्तु रूप, जैसे कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसे जो स्वरूप में जागृत है उनको अवस्तु रूप लगता है। सारा जगत क्या लगता है? सकल जगत स्वप्नवत, सकल जगत कितना कैसा लगता है? स्वप्न समान। बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत रोया, सब कुछ किया कि नहीं किया, बहुत हंसा, क्या हुआ आत्मा में? आत्मा वैसा का वैसा रहा है। पुरुषार्थ से ऐसा अनुभव होता है, उसको पुरुषार्थ का पराक्रम इधर कहा है, क्योंकि लोग हिल जाते हैं, कुछ भी प्रसंग बनता है तो लोग हिल जाते हैं। अरे मेरा वो हो गया, तेरा था ही कब, तेरा आत्मा से सिवा तेरा तो कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा प्रसंग जन्म मरण का होता है, तो उस विषय में और इस विषय को खोल करके बताते हैं कि देह के प्रति जिसका वस्त्र का संबंध है, देह के प्रति वस्त्र जैसा संबंध है, वैसा आत्मा के प्रति जिसको देह का संबंध है। शरीर और वस्त्र भिन्न भिन्न है, हम रोज बदलते हैं, कभी तो दिन में दो तीन दफे भी बदलते होंगे। तो जो वस्त्र छोड़ दिया तो रोते रोते छोड़ते हैं क्या? दूसरा पहना तो क्या राजी राजी हो जाते क्या? ये वस्त्र बदलना जितना नॉर्मल होता है, कितना एकदम नॉर्मल लगता है, ठीक है, कल पहने थे छोड़ दिया, ना दूसरा पहन लिया, और वस्त्र फटने से देह को कुछ होता नहीं, वस्त्र फट जाता है, जल जाता है, शरीर को क्या होता है? कुछ नहीं होता। ऐसा आत्मा के प्रति जिसने देह का संबंध यथा तथ्य देखा है, ऐसा ही है और ऐसा ही देखा है, यथा तथ्य माने ऐसा ही है और ऐसा ही देखा है, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करते हैं, जला देते हैं, आत्मा जलती है क्या? आत्मा तो कोई जला सकते भी नहीं, जिंदा भी कोई आग लग जाती है शरीर को, उसको आत्मा नहीं जलती, तो आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा का एक प्रदेश को भी आग छू नहीं सकती, कोई स्पर्श नहीं कर सकता, आत्मा को कोई स्पर्श नहीं करता। अवैध किला है वो, उतना तो गीता में आता है, वो भगवत गीता है, अछेद्योयम मदाहोयम अक्लेद्यो शोष्येवच, अछेद्य अभेद्य अदाह्य, जला नहीं सकते, छेद नहीं सकते, भेद नहीं सकते, मार नहीं सकते, शस्त्र से कुछ काट नहीं सकते, पानी से भिगो नहीं सकते, हवा से उसको सूख सकते नहीं कि सुखा दें, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई अजर अमर तत्व है, वो अपना स्वरूप है, ऐसा जिसने देखा है, देखा है मैंने, अनुभव किया है, म्यान के प्रति तरवार जैसा संबंध है, क्योंकि तरवार के आकार से म्यान होता है। जैसी तरवार होती है वैसा ही म्यान होता है। चाहे स्त्री हो मनुष्य हो, छोटा आकार हो बड़ा आकार हो, दुबला हो पतला मोटा हो, कुछ भी हो, देहाकार आत्मा का आकार होता है, देह का आकार समान, ऐसा संबंध जिसने देखा है मैंने अनुभव किया है। अबद्धस्पृष्ट आत्मा जिसके अनुभव में आया है, अबद्ध मैंने जिसने जिसको कर्म का बंधन नहीं और जिसको किसी भी अन्य द्रव्य का स्पर्श नहीं, कुछ करे वो तो बात ही नहीं, स्पर्श भी नहीं, और जो कर्म से बंधा हुआ नहीं है, त्रिकाल नहीं बंधा हुआ है, क्योंकि कर्म तो रूपी है और आत्मा रूपी है। रूपी अरूपी को कैसे बांधे, तो शास्त्र में करणानुयोग तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। ये संयोग संबंध की बात है। आत्मा के बगल में संग में रहता है परमाणु, कार्मण वर्ग नाका परमाणु, ज्ञानावरण आदि आठ प्रकृति, संयोग संबंध होता है। आत्मा तो मूल स्वरूप में अबंध स्वभावी है, वो अबंध ही रहता है, कभी बनता नहीं है। ऐसा आत्मा का जिसने अनुभव किया है, ये महापुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है, ऐसे महापुरुषों को जीवन मरण दोनों समान है। देह का संयोग का भी ज्ञान होता है और वियोग का भी ज्ञान होता है। देह आया और देह गया, मैं मेरे घर में सुरक्षित हूँ, बाहर में ट्रैफिक आता जाता है, जब कोई अपने घर में सुरक्षित बैठ कर के खिड़की से देखता है कि कोई आया और कोई गया, ऐसे देह भी आया और देह भी गया, किसी के आने जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या लेना देना है, तो कुछ नहीं। जिसने देह से अपने आत्मा को भेद ज्ञान में भिन्न जाने, कैसे जाने, भेद ज्ञान से भिन्न जाने, ये भेद ज्ञान है, वो मोक्ष की कला है। किसकी कला है, निर्वाण पद प्राप्त करने की कला है, वो भेद ज्ञान है। वो भेद ज्ञान से जिसने देह से आत्मा भिन्न अनुभव किया, उनको जीवन मरण से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और भिन्नता के लिए लिखते हैं कि चंद्र भूमि को प्रकाशित करता है, उसके किरण की कांति के प्रभाव से रह गया, हाँ जो अचिंत्र द्रव्य, ठीक है, जो अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर के अचिंत्य करती है, यह अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा निश्चय जो परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया उसका अपार उपकार है। सत्पुरुष का उपकार गाते हैं, उपकार वचन है ये। ये चार उपकार वचन तो आगे 493 के पत्र में अच्छे आए हैं, यहाँ भी एक बहुत बढ़िया बात निकली है। ऐसी शब्द रचना, ऐसी वाक्य रचना अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आती है। जो अचिंत्य द्रव्य कैसा आत्मद्रव्य है वो कैसा है, अचिंत्य है। अचिंत्य माने क्या कि चिंतमन से पार, हम हमारे आत्मस्वरूप का चिंतमन करने को जाएं तो जो चिंतमन में समावेश नहीं होता है उसका स्वरूप चिंतमन से बाहर रह जाता है, जैसे टीवी का पर्दा इतना है और पिक्चर बड़ा हो तो थोड़ा अंदर बाकी के बाहर, ऐसे स्वरूप को चिंतमन में लेने वाले को जो स्वरूप के ज्ञाता है उसको मालूम पड़ता है। चिंतमन में समावेश पामे उतनी छोटी वस्तु नहीं है, उतना महान है, उतना महान है कि चिंतमन उसके आगे बहुत छोटा है, उसका चिंतमन बहुत छोटा लगता है। अचिंत्य है फिर भी अनुभव गोचर है, चिंतमन में नहीं आता है लेकिन अनुभव में अवश्य आता है। चतुर्थ गुण स्थान में आता है अनुभव में, तो चौथा गुण स्थान में आ जाता है। चिंतमन विकल्प रूप है। चिंतमन क्या है? विकल्प रूप है, विकल्प में नहीं आता। चिंतमन चित्त में होता है, चित्त माने मन में होता है, मन में नहीं आता वो, इंद्रिय ज्ञान हो गया, अतिंद्रिय ज्ञान का विषय है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए मनातीत है, मन से पार जाना पड़ता है ज्ञान को। ऐसा जो अचिंत्य द्रव्य है उसकी कांति, कांति मैंने तेज, कांति मैंने तेज, वो भी तेज कैसा, जो शोभायमान होता है उस ऐसा तेज को कांति कहते हैं। जैसे सोना है, सोना में सोना का तेज होता है और उससे इसकी शोभा होती है। जेवर बनाते हैं, अलंकार बनाते हैं तो उसका तेज उसकी शोभा करता है, उसको कहते हैं कांति। सादा अर्थ तेज है लेकिन शोभायमान तेज को कांति कहते हैं, उसकी उसमें वो दो भाव साथ में है। तेज भी है और इसकी शोभा भी वही है। ऐसे आत्मा की शोभा क्या? शुद्ध चीति स्वरूप कांति है। जैसा शुद्ध चैतन्य है वैसा ही इसकी परिणति है। चीति मैंने चैतन्य की परिणति को चीति कहते हैं, या चैतन्य की परिणति को चीति कहते हैं। वो शुद्ध, उसमें कोई रागादि का विभाव का उसमें कोई संबंध नहीं है। ऐसे शुद्ध चीति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर के, आत्मा में से प्रकट होकर के अचिंत्य प्रकाश करती है। तो उसका प्रागट्य भी अचिंत्य है। द्रव्य का स्वरूप तो चिंतमन गोचर नहीं है, किंतु इसकी शुद्ध चैतन्य रूप परिणति भी चिंतमन गोचर नहीं है, वो भी अचिंत्य है, उसको भी बता सकते नहीं है। अपने यहाँ के स्वाध्याय में अनुभव प्रकाश में से स्वानुभव के 20 नाम हमने पढ़े। कितने पढ़े? 20 नाम। और स्वानुभव में गुण कितने हैं? अनंत प्रकट हुए। गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माही। इसमें 20 क्या है? अनंत में 20 का क्या लगता है? आत्मा की शोभा नहीं है। राग द्वेष मोह वो आत्मा की शोभा नहीं है। शोभा तो नहीं है, वो तो शुद्ध चैतन्य में कलंक है। कलंक क्या है? तो कलंक है। इसका शुद्ध पर्याय इसकी शोभा है, वो परम प्रकट होती है, तो वो भी अचिंत्य रूप से प्रकाशित होती है। उसका भी वर्णन मन में नहीं आता तो वाणी में तो आएगा कहाँ से? और जगह कृपालु देव लिखते हैं कि जो आत्मस्वरूप ज्ञान में आता है, अनुभव में आता है, वो मन नहीं जानता है। मेरा मन भी वो नहीं जानता। क्यों? कि मन की जानने की शक्ति सीमित है और मेरा स्वरूप बेहद असीम है। इसलिए वो मन नहीं जानता। और मन की बात बोलने में पूरी नहीं आती। जितना मन में आता है उतना बोलने में नहीं आ सकता। मन जितना समझता है उतना कोई नहीं बोल सकते, और जितना बोलने में आवे उतना लिख नहीं सकते। लेखनी में नहीं आता, तो ये तो सब लिखावट है। अब देखिए शास्त्र में कितनी कम बातें आती है। कहीं लोगों को ऐसी भ्रांति है के शास्त्र पढ़ करके हम ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन शास्त्र में बात कितनी कम आती है। तो जो अनुभव गोचर है वो तो मन नहीं जानता। मन की बात तो बोलने में नहीं आती, और बोलने की बात तो लिखने में उतनी नहीं आती। इतना अल्प, इतनी अल्प अभिव्यक्ति शास्त्रों में है। इसलिए शास्त्र पठन से भी सत्संग में अधिक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। वो बोलने से समझ में आती है, और बोलने वाला अगर स्वानुभवी हो तो इसका अनुभव भाषा के आगे जाकर के उनके चेष्टा में आता है, उसकी चेष्टा में आता है। क्योंकि भाव की अभिव्यक्ति मुखमुद्रा से होती है, नेत्रों से होती है। माँ के नेत्रों में एक दो साल का बच्चा इसकी गोद में सोया हुआ क्या देखता है, क्या देखता है? उनको तो ज्यादा ज्ञान का उघार तो नहीं है, वो बता भी नहीं सकेगा कि मैं क्या देखता हूं। लेकिन वो बच्चे के मुख मुद्रा से समझ में आता है कि वो क्या देखता है। आता है कि नहीं समझ में? और बच्चे के भावों की अभिव्यक्ति होती है कि नहीं होती है? भले ही थोड़ा ही हंसता हो, लेकिन वो कितना प्रसन्न हुआ अपनी माँ को देखते हुए, वो कितना प्रसन्न हुआ माँ को देखते हुए, नहीं माँ के प्रेम को देखते हुए कितना प्रसन्न हुआ, तो समझ में आता है कि नहीं आता है? उसको लिखो। चलो क्या लिखोगे उसको? बोलो, क्या बोलोगे? कोई बोलने की चीज नहीं होती है, ये कोई बोलने की चीज नहीं होती। इसलिए शास्त्र से भी सत्संग से अधिक लाभ होता है। इसी कारण से शास्त्र से भी सत्संग की महिमा ज्ञानियों ने अधिक बताई है, इस यही कारण से बताई है। समय सार अपने पास एक बहुत बड़ा कुंदकुंद आचार्य का महान परमागम है, उसकी टीका किया अमृतचंद्र आचार्य ने 900 साल के बाद। इसके बाद उसी समय सार में पंडित जयचंद्र जी, जो करीब 150 साल पहले जयपुर में हुए, जयचंद्र जी पंडित, उसने भावार्थ लिखा है। वो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने हरेक गाथा की टीका पर भावार्थ लिखा है। कभी कभी उन्होंने ऐसे न्याय भावार्थ में निकाले हैं, ऐसी ऐसी बातें निकाले हैं कि जो आचार्य श्री ने नहीं कही वैसी बातें उन्होंने कही है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि भले ही आचार्य श्री महान ज्ञानी थे, जयचंद्र जी इसके नीचे के स्तर के ज्ञानी थे, फिर भी आत्मानुभवी तो दोनों थे। आत्मा के अनुभव तो दोनों को ही थे, ज्ञानी थे। इसलिए अब क्या होता है कि आचार्य देव को भी जितना विकल्प आया उतना लिखेंगे, जितना विकल्प आया उतना ही लिखेंगे। वो विकल्प का भी कोई स्वकाल होता है, उतना लिख दिया, फिर आगे पीछे कोई लगाव नहीं है, तो वितरागी है। ज्ञानी का विकल्प कोई ज्यादा चला, जितने आचार्य देव वितरागी है उतने वितरागी वो नहीं है, नीचे वाले हैं, उसका विकल्प ज्यादा चल जाता है। और आत्मानुभव तो दोनों का है, अनुभव का विषय तो दोनों का आत्मा ही आत्मा है। विकल्प ज्यादा चलता है तो कोई दो बात अच्छी ज्यादा लिख देते हैं। अनेक गाथाओं की टीका में वो बात देखने में आती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सत्संग में बैठे इसके बजाय महान आचार्यों के ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़े। देखो गुरुदेव ने कितनी बात खोल खोल कर बताई, समय प्रसार पर कितनी बात खोली, आचार्यों की भक्ति करते गए और बात को खोलते गए, बात खोली अपने आत्मा में से। वो बोलते क्या है, ये आचार्य देव ऐसा कहता है क्या, लेकिन महाराज वहां तो लिखा नहीं है। तो वहां लिखा नहीं है लेकिन हमको पढ़ने में आता है। वहां शब्द रूप में नहीं लिखा है लेकिन आचार्य देव के पेट में क्या बात है वो खुद निकालते हैं ज्ञानी। ऐसे कम बोलने वाले आचार्य होते हैं, कम लिखने वाले होते हैं, इसमें से इसकी गहराई में जाने वाले ज्ञानी और भी कहीं बातें प्रकाशित करते हैं। क्या कारण है, ये वचनामृत खुद ही अचिंत्य है, ये भी कृपालु देव का वचनामृत है, वो भी एक अचिंत्य है। अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर के अचिंत्य करती है। कहां से निकलती है बात, चैतन्य की शोभा में से निकलती है, चैतन्य की पर्याय में से निकलती है। जो द्रव्य अपना बेहद स्वभाव को धारण करने वाला है, जो द्रव्य अपना बेहद स्वभाव को धारण करने वाला है, जिसके स्वभाव की कोई हद नहीं, दृष्टि इसका भी कब्जा कर लेती है। बताइए कौन बड़ा, द्रव्य बड़ा या उसको कब्जे करने वाली दृष्टि बड़ी, कौन बड़ा है बताइए। वो दृष्टांत लिया था ना, आंख से देखते हैं वहां कितनी जगह है सूक्ष्म की, 2 सेंटीमीटर की होगी। बड़े बड़े पर्वत को देखते हैं, आकाश को देखता है, सूर्य चंद्र को देखता है, हजारों योजन दूर है, किन असंख्य योजन दूर है, लाखों करोड़ों अरबों योजन दूर है कि नहीं, ऐसे इतने मात्र से देखते हैं, 1 सेकंड में देख लेता है कि चंद्र इधर है, तारा इधर है, वो इधर है, वो इधर है। यहां बैठे बैठे ये ज्योतिष के विमानों की गति का नाप निकालता है कि आज वो तारा इधर है, वो 15 दिन के बाद उधर होएगा। निकालते के नहीं है बैठे बैठे, कितने कितनी बात है ज्ञान में। ये तो अल्प क्षोभ वाला ज्ञान की बात है, इसमें जो बेहद ज्ञान भरा है वो तो उसका चिंतन नहीं हो सकता। बोले तो क्या, कथन तो क्या करे जिसका चिंतन भी हो नहीं सकता। ऐसा अचिंत्य द्रव सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा अचिंत्य वस्तु स्वयं खुद ही स्वयं है, मामूली नहीं है कोई। स्वाभिमान होना तो उतना होना, अगर उतना स्वाभिमान नहीं है तो सब अभिमान है। स्वाभिमान होना तो उतना होना कि मेरा स्वरूप अचिंत्य है, बेहद है, किसी की तुलना कर सकती अतुल है, तोलन नहीं कर सकते किसी के साथ। और किसी की बराबरी से उपमा नहीं दे सकते, इसलिए अनुपम है। अतुल है, अनुपम है, ऐसा करके, ऐसा कह करके छोड़ देना पड़ता है, बात को छोड़ देना पड़ता है। तो बात को छोड़ करके क्या करना कि स्वानुभव में जम जाना, डूब जाना, ज्ञान में पूरा आ जाएगा, ज्ञान में पूरा का पूरा आ जाएगा। ऐसा निज स्वरूप है, वो सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, बनाना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया, ऐसी बात जिसने बताई, निश्चित तेरा स्वरूप ऐसा है। तुम निशंक रूप से उसको जानो, समझो और निशंक हो जाओ। निश्चय से निशंकता आती है, ऐसे निश्चय प्रकाश करने वाले सत्पुरुष का उपकार कितना अपार उपकार है, जिसकी हद नहीं उतना उपकार है। क्यों के ऐसा कहने वालों से, ऐसे स्वरूप का, निजात्म स्वरूप का जिसको दर्शन होता है, उनको संसार के अनंत दुख मिट जाते हैं, संसार के सर्व दुख और सर्व क्लेश से मुक्ति हो जाती है और अनंत काल पर्यंत पूर्ण सुख, परिपूर्ण सुख और परमानंद में विराजमान हो जाते हैं। इतना अनंत लाभ होता है, इसलिए अपार उपकार है, अनंत उपकार है। कोई चढ़ा बढ़ा के बात नहीं किया है, यानी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जाजरेशन नहीं है। वास्तव में अनंत लाभ होता है, इसलिए अनंत उपकार और अपार उपकार बोलने में आता है। ऐसे यहाँ सत्पुरुष की भक्ति किया है, क्या किया है, सत्पुरुष की भक्ति किया है। अब तर्क कोई करेंगे शास्त्र पढ़ने वाले कि समयसार ऐसा कहता है कि एक द्रव दूसरा दूसरा द्रव का कुछ करता नहीं तो उपकार कैसे किया। द्रव्यानुयोग से भक्ति नहीं होती क्या? द्रव्यानुयोग से भक्ति नहीं होती, भक्ति होती है वहां द्रव्यानुयोग बीच में आता है, नहीं है। द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग ने स्थान में है द्रव्यानुयोग द्रव्यानुयोग के स्थान में है और भक्ति भक्ति के स्थान में होती है। एक प्रकरण में दूसरा प्रकरण की टांग अड़ाना नहीं, वो अपेक्षा बीच में नहीं लाना कभी, वरना भक्ति टूट जाएगी। ये बात हो जाएगी कि भक्ति टूट जाएगी, क्या फायदा। चारों अनुयोग के सिद्धांत अपने अपने हैं। एक अनुयोग में दूसरा अनुयोग का सिद्धांत अड़ाना नहीं।
भक्ति नो अनुयोग पांचमो गणीशु तो भक्ति नो अनुयोग पांचमो गणीशु तो
चारों का सार वो है। चारों अनुयोग का क्रीम क्या है, क्रीम निकालो तो वो भक्ति है। हाँ, मथन करो, जैसे छाछ को मथन करते तो मक्खन निकलता है, पर मक्खन निकल गया फिर छाछ का कोई काम नहीं है। माखन था सो विरला खाया, छाछ है जग भरमाया। अब दू नट नागर की बाजी, क्या जाने ब्राह्मण काजी। आनंद घन जी ने गाया। गगन मंडल में गोवा मियानी वसुधा दूध जमाया, माखन था सो विरला खाया, छाछ जग भरमाया। फिर वो जो आगम की बातें हैं ना, उसमें लड़ाई करने लगे, ऐसा नहीं है वैसा है, हमारे आगम में ऐसा लिखा, इस आगम में ऐसा लिखा, उस आगम में ऐसा लिखा। क्योंकि चरणानुयोग ऐसा बोलेगा कि मुनिराज चार हाथ देख करके पांव रखेंगे, ताकि छोटे मोटे जीव हुए जानवर है वो पैर के नीचे मर नहीं जाए। क्यों कि अहिंसा महाव्रत का पालन करके गिरिया समिति से चलते हैं वो। अब द्रव्यानुयोग को कोई अड़ाएं कि मुनिराज का आत्मा और शरीर तो भिन्न भिन्न है, शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता नहीं, शरीर से संयम पाल सकता नहीं, दो बात का मेल खाने वाला नहीं है, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की लड़ाई होगी, एक भी अनुयोग सिद्ध नहीं होगा। या तो द्रव्यानुयोग खोटा है, या तो चरणानुयोग खोटा है, दोनों सच्चा है। ऐसे बात कोई समझ में नहीं आएगी। यहाँ चरणानुयोग चल रहा है, वहाँ द्रव्यानुयोग की बात कैसे बीच में डालते हो, इधर भक्ति की बात चल रही है, द्रव्यानुयोग कैसे बीच में डालते हो। बीच में कुछ डालना नहीं चाहिए, तभी बात समझ में आएगी कि भक्ति क्या चीज होती है। भक्ति को वहाँ क्रीम क्यों बताया, कि उसमें अध्यात्म है, इसलिए क्या है इसमें अध्यात्म है। इसमें चारों अनुयोग का क्रीम क्या है, अध्यात्म है। तो चारों अनुयोग में से जिसने अध्यात्म का अनुयोग प्राप्त किया, उन्हें चारों अनुयोग समझ लिया, वरना अच्छा से जग भरमाया और कुछ नहीं रहा। ब्राह्मण काजी मैंने हिंदू मुसलमान नहीं समझेंगे वो बात को, काजी मुसलमानों में होते हैं और हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं। जैन की बात हिंदू मुसलमान नहीं समझ सकते, आनंद गंज ने वो बात कर दिया कि जैनों की बात हिंदू मुसलमान नहीं समझ सकते। ये बात कोई ऐसी ही है। ऐसे सत्पुरुषों का अपार उपकार है। क्यों? कि वो आचार्यों के पेट की बात भी खोल करके बता सकते हैं। जितनी वितरागता कम है उतना लोगों को ज्यादा फायदा। देखो क्योंकि इसका योग बैठता है, मुनि जंगल में निवास करते हैं और कम बोलते हैं, मौन ज्यादा रहते हैं, इसलिए तो उसका नाम मुनि है। कम बोलते हैं मौन ज्यादा रहते हैं इसके तो इसलिए तो उनको मुनि कहते हैं। मौन रहने वाले को मुनि बोलते हैं। उपदेश देने योग्य हैं, गुरु के स्थान में हैं, फिर भी वितरागता बहुत है। तो सुनने वाला ये कहेगा कि आप हमारे गुरु हैं, इसलिए कुछ बोध दीजिए हमको। बोले कि तुम हमको गुरु मानता है लेकिन हम तो ऐसा कोई मानता नहीं है, तुम भी आत्मा और हम भी आत्मा है, हमको हमारा काम करने दो, हमको हमारा आत्म कल्याण करने दो, हमको बोध का विकल्प आएगा तो सहज चलेगा, वरना हमारा मौन से हमारा स्वरूप को आत्म स्वरूप को समझ लेना। क्या हमारा मौन से भी आत्मस्वरूप को समझ लेना। और ऐसे वीतरागी मुद्रा मुनियों की होती है कि नहीं बोले तो भी वीतरागता का बोध उनके दीदार से ही मिल जाता है, दिखाव से ही मिल जाता है। कृपालु देव ने तो सत्पुरुष की भक्ति बहुत जगह की है। इसका यही कारण है कि आम समाज को ज़्यादा योग बैठता है और बहुभाग इन्हीं के वचनों से इस आत्मकल्याण के परमार्थ के मार्ग को मार्ग पर लोग चढ़ते हैं। उन्हीं के कारण से ज़्यादा लोग परमार्थ के मार्ग में चढ़ते हैं। यही कारण से सत्पुरुष की भक्ति बहुत जगह प्रकाशित किया है। और पत्र का शेषण से कल के स्वाध्याय में या परसों में मान भी हूँ।